जय धवला पुस्तक 12वी लेक्चर नंबर 1। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहं नमो सुतां, नमो आययाणं, नमो वचायाणं, नमो लोए सवसाहूणं। जेते केवलदंशन नाणुवजोगे जुगवधुवजुत्ता, ते केवलिनो पणमिय वोच्चम उवजोगमणियोगम। यह श्री भीमसेनाचार्य रचित जय धोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टार तथा यति युषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 12वीं पुस्तक जो अभी नया अनुयोग द्वारा चालू होता है, उपयोग नाम का अर्थाधिकार है। अभी कौन सा हो गया हमारा? वेदक। अब उपयोग नामक अर्थाधिकार, ये वैसे अर्थाधिकार 7वां है और पुस्तक 12वीं है। यहाँ से शुरू होता है, उसका मंगलाचरण अभी अभी हमने देखा है। ये पृष्ठ संख्या यहाँ से 1 शुरू होता है। ये गाथा का जो मंगलाचरण है उसका अर्थ देखते पहले नीचे, जो केवल दर्शन और केवल ज्ञान इन दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त है। युगपत शब्द डाला, दोनों उपयोग से होकर बनते वो युगपद है, उपयुक्त है ना, उपयोग रूप, दोनों उपयोग एक साथ है। उन केवली जन को नमस्कार करके ते केवलिनो पणमीय उपयोग अनुयोग द्वार का कथन करता हूँ। वोच्छम उवजोगम अनियोगम, उवजोगेति अनियोगदारस्य सुत्तम। अब उपयोग अनुयोग द्वार के गाथा सूत्रों का अनुसरण करते हैं। यानी अभी तो पहले तो हमने जो गाथा सूत्रों का अनुसरण किया था कि किससे बंधा है क्या है उसकी बात, यानी उसमें ये सारा ये संक्रमण अनुभाग प्रदेश प्रकृति स्थिति वगैरह उसकी बात हमने देख ली। अब यहाँ आगे की जो गाथाएं हैं गाथा सूत्र उसकी बात यहाँ चलेगी। कषाय प्रावृत के 15 अर्थाधिकारों के मध्य, 15 अर्थाधिकारों में से ये 7वां अर्थाधिकार, क्रोधादि कषायों के उपयोग स्वरूप का निरूपण करने वाला उपयोग नामक जो 7वां अनियोग द्वार है, इस समय उसके अर्थ का विशेष व्याख्यान करते हुए उसके आलंबनभूत गाथा सूत्र का अनुसरण करते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है, यानी गाथा सूत्र के अनुसार यहाँ सब उसके चुन्नी सूत्र भी बताएंगे और उसका विशेष व्याख्यान भी करेंगे यहाँ पर। अब वह सूत्र कौन है, सूत्र ने वो सूत्र गाथा कौन सी है, इस प्रकार शिष्य के अभिप्राय रूप शंका रूप से ग्रहण कर उसका निर्देश करने वाले पृच्छा वाक्य को कहते हैं। तम जहा, वह जैसे, यह सूत्र सुगम है, यानी वो गाथा सूत्र क्या है कौन सा है उसको यहाँ बताने वाले हैं। ऊपर गाथा पहले पढ़ेंगे। केवचिरम उवजोगो कम्मिक सायमिको वके नहियो कोवा कम्मिक साये अभिखम उवजोगम उवजुत्तो। एक जीव का एक कषाय में कितने काल तक उपयोग होता है, यानी एक कषाय कितने काल तक चलती है, कषाय में उपयोग होता है ना, कषाय तो ख्याल में आ रहे हैं ना, किस कषाय का उपयोग अन्य किस कषाय के उपयोग से अधिक है, और कौन जीव किस कषाय में पुनः पुनः एक उपयोग से उपयुक्त रहता है। ये तो गाथा सूत्र गाथा है, अब इसका विस्तार से विवेचन चलेगा, फिर से इसका अर्थ देखते हैं। दो नंबर के पृष्ठ पर चल रही थी। अभी हमने गाथा भी पढ़ी थी 63 नंबर के ऊपर की। यहाँ से नया विषय शुरू हो जाता है, उसका नाम है उपयोग अधिकार, उपयोग अनियोग द्वार। एक जीव का एक कषाय में कितने काल तक उपयोग होता है, फिर किस कषाय का उपयोग, अन्य किस कषाय के उपयोग से अधिक है, यानी किस कषाय में अधिक काल तक रहता है जीव, इस तरह भी हम सोच सकते हैं इसका अर्थ। और कौन जीव किस कषाय में पुनः पुनः एक उपयोग से उपयुक्त रहता है, इसका अर्थ अभी करेंगे। उपयोग अनुयोग द्वार से संबंध रखने वाली 7 सूत्र गाथाओं में यह पहली सूत्र गाथा है, यानी यहाँ 7 सूत्र गाथाओं का विवेचन चलेगा। अब इस गाथा के अर्थ की प्ररूपणा करते हैं। यथा, यह गाथा 3 अर्थों का प्ररूपण करती है। केवचिरम उवजोगो कम्मी कषायम्मी, ऐसा कहने पर क्रोधादि कषायों में से एक एक कषाय में एक जीव का कितने काल तक उपयोग रहता है, एक बात। क्या सागरोपम, पल्योपम, पल्योपम के असंख्यात विभाग, एक आवली के असंख्यात विभाग, संख्यात समय या एक समय प्रमाण काल तक उपयोग रहता है, ऐसी पृच्छा की गई है। एक विशिष्ट कषाय में कितने काल तक लगातार रहता है जी, ऐसा पूछने पर सब कषायों का निर्व्याघात रूप से जघन्य और उत्कृष्ट उपयोग काल अंतर्मूर्त प्रमाण है। निर्व्याघात रूप से यानी व्याघात रहित रूप से जघन्य और उत्कृष्ट उपयोग काल अंतर्मूर्त है, यह आगे कहेंगे। यह एक अर्थ है, वो तो बातें आगे होगी, इसका उत्तर तो आगे आएगा, यहाँ तो केवल प्रश्न पूछे है। उसका उत्तर आया ही नहीं है, कितने काल तक है, बस इतनी पृच्छा सूत्र की है, इसका तो कथन आगे आने वाला है। कौन से ऑप्शन? हाँ, ये तो उन्होंने उसका अभी विस्तार है, ये टीका है, टीका में इसको बताया, यानी ये प्रश्न जो पूछा था कितने काल तक, तो काल से क्या मतलब है, सागरों तक है, पल्लों तक है, पल्ले के असंख्यात विभाग तक है, ये उन्होंने खोलकर बताया, प्रश्न का अर्थ खोलकर बताया। बराबर, को व केन दिगो, ऐसा कहने पर क्रोधादि कषायों के उपयोग काल परस्पर क्या सदृश है या विसदृश, यह अल्प बहुत्व विधि पूछी गई है। यह दूसरा अर्थ, पहले पूछा था कि क्रोधादि कषाय में से एक एक कषाय में जीव कितने काल तक रहता है, उसका उपयोग कितने काल तक रहता है। दूसरी बात, ये जो उपयोग काल है अलग अलग कषायों का, क्या वो समान है, क्या किसी कषाय का ज्यादा है, किसी कषाय का कम है, ये दूसरा प्रश्न। आगे 3 पेज पर 5वां पॉइंट, कोवा कम्मी कषाय, ऐसा कहने पर नरकादि मार्गणा विशेष से संबंध रखने वाला कौन जीव क्रोधादि कषाय में से किस कषाय में अभिक्कम उपयोगम उपजुक्तो, अभिक्षण उपयोग से उपयुक्त होता है, पुनः पुनः उपयोग रूप से परिणत होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य, यानी कौन से कषाय में बार बार कषाय रूप परिणत होता है, उसे कषाय में उपयुक्त होना, ऐसा शब्द यहाँ डाला है। नारकी जीव अपनी भवस्थिति के भीतर क्या क्रोध के उपयोग से बहुत बार परिणमता है, अथवा मानोपयोग से, मायोपयोग से या लोभोपयोग से बहुत बार परिणमता है, यानी कौन सी कषाय उसके अधिक बार होती है। इसी प्रकार शेष गतियों में भी पृच्छा करनी चाहिए, यह इस कथन का भावार्थ है। यानी 3 प्रश्नात्मक ये जो सूत्र गाथा है, इस पृच्छा का निर्णय आगे चूर्णी सूत्र का अवलंबन लेकर करेंगे। वहां तो केवल ये प्रश्न डाले हैं और इसका निर्णय इसके उत्तर के रूप में वहां चूर्णी सूत्र आए हैं। इस प्रकार यह तीसरा अर्थ है, इस प्रकार यह गाथा इस प्रकार के 3 अर्थों में प्रतिबद्ध है, यह सिद्ध हुआ। अब अवसर प्राप्त दूसरी गाथा का अवतार करेंगे यथा, क्योंकि 7 सूत्र गाथाओं के द्वारा ये उपयोग का प्रकरण चलेगा। अब ये दूसरी जो सूत्र गाथा है 64 नंबर ऊपर पढ़ेंगे। एकम विभव गहणे एक कसायम कदिश उजोगा एकम उजोगे एक कसाय कदि भवाच। एक भव को आश्रय कर एकम विभव गहणे, एक कषाय में कितने उपयोग होते हैं। पहले तो जनरल बात की कि कौन से कषाय का उपयोग काल अधिक है या कम है। अब कहते हैं कि विशिष्ट गति में किस कषाय का काल ज्यादा है कम है। तो एक भव को आश्रय कर एक कषाय में कितने उपयोग होते हैं, उसी प्रकार एक कषाय संबंधी एक कषाय में कितने उपयोग होते का अर्थ है एक भव में क्रोध में कितनी बार आया जी, मान में कितनी बार आया, माया में कितनी बार आया। बारंबार एक ही कषाय बहुत बार होती है क्या, सब इक्वल होते हैं, इस प्रश्न है। उसी प्रकार एक कषाय संबंधी एक उपयोग में कितने भव होते हैं। कोई कषाय चल रही है तो वो कषाय कितने भवों तक चलेगी, ऐसा हो सकता है ना। अभी यहाँ क्रोध में मरा और नरक में क्रोध में जन्मा, तो क्रोध एक कषाय कंटिन्यूस 2 भवों तक चली कि नहीं, इसमें थोड़ा उसमें थोड़ा। अब यहाँ इसका क्या कहना है वो तो आगे आएगा, यहाँ क्या कहना चाहते हैं। अब इस दूसरी गाथा के अर्थ का कथन करते हुए पूर्वार्ध में उपयोग को आधेय, आधार और आधेय, आधार लेने वाला जो है वो आधेय है, आधार आधेय किसको कहना, तो जिसका आधार लिया जाता है वो आधेय है। पूर्वार्ध में उपयोग को आधेय बनाकर यह पूछा की गई है कि एक भव ग्रहण को आधार करके, आधार भव ग्रहण को लिया और उसका आधेय, उसमें एक कषाय संबंधी उपयोग कितने होते, वह कैसे, शंकाकार पूछता है। उसका समाधान, एकम विभव गहने ऐसा कहने पर नरकादि गतियों में से अन्यतर भव में यानी किसी एक भव में यह कहा गया है। एक कषायम में ऐसा कहने पर क्रोधादि कषायों में से अन्यतर कषाय में यह कहा गया है। कदिच उजोगा ऐसा कहने पर कितने उपयोग होते हैं, क्या संख्यात उपयोग होते हैं या असंख्यात उपयोग होते हैं, यह पूछा गया है। नरकादि गतियों में से संख्यात वर्ष वाले या असंख्यात वर्ष वाले भव को आधार रूप से स्थापित कर वहां क्रोधादि कषायों के उपयोग परिणमन के बार कितने होते, उपयोग परिणमन के बार यानी एक बार क्रोध में आया क्या, 10 बार आया क्या, असंख्यात बार आया, उसको उपयोग परिणमन के बार कितनी बार उपयोग उस कषाय में परिणमित हुआ, तो वो संख्यात बार के असंख्यात बार ये पूछ रहे यहाँ पर। क्या संख्यात होते हैं या असंख्यात होते हैं, अथवा जिस नरकादि भव में अन्यतर कषाय संबंधी उपयोग संख्यात या असंख्यात हुए हैं वहां शेष कषाय संबंधी उपयोग कितने होते हैं। क्रोध के बारे में बता दिया तो अन्य कषाय में कितने होते हैं, विशिष्ट गति में किसी एक कषाय की अगर मुख्यता होती कि बारंबार उस कषाय रूप से परिणत होता रहता है तो उसके ज्यादा बार है क्या, अन्य कषायों के अधिक बार है, उसको यहाँ बता रहे पूछ रहे। तो कहते हैं क्या तत्प्रमाण ही होते हैं या विसदृश प्रमाण को लिए होते हैं, क्या सभी में सभी कषाय में समान रूप से उतने ही बार होते हैं क्या, कम अधिक होते हैं हीनाधिक होते हैं। इस प्रकार जो विचार है वह भी इस गाथा के पूर्वार्ध में प्रतिबद्ध है, यह यहाँ भावार्थ है। एकम्य वजोगे गाथा के इस उत्तरार्ध में क्रोधादि कषाय संबंधी संख्यात और असंख्यात उपयोगों को आधार करके, अब यहाँ उपयोग आधार है और वो आधेय हो गए, वो कितने भव होते हैं, भव को आधेय किया, पहले में एक भव को आधार किया और कौन से कषाय में कितने बार उपयोग परिणमित होता है उसको आधेय बनाया। जो आधार लेता है वह आधेय। अब यहाँ उपयोग को आधार बनाया है और उस एक कषाय में उपयोग है तो कितने भव उसी कषाय में रहेगा, तो ये भव को आधेय बनाया। तो क्रोधादि कषाय संबंधी संख्यात और असंख्यात उपयोगों को आधार करके पुनः उनमें अतीत भव कितने होते हैं, इस प्रकार आधेयभूत भवों के अल्पभूत की पृच्छा की है, भवों को आधेय बनाया है और उपयोगों को आधार बनाया। शंका, वह कैसे? समाधान, एकमीय वो जोगे एक उपयोग में, यह इसका अर्थ है। एक कषाय क्रोधादि कषाय में से अन्यतम कषाय से प्रतिबद्ध एक उपयोग में, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। कदि भवाच, कितने भव संभव है, इस प्रकार अतीत काल के विषय में यह प्रश्न किया गया है। यहाँ पर इस वाक्य का यह अर्थ है कि नरकादि गतियों में एक जीव के अतीत काल संबंधी बहुत परिवर्तन बार व्यतीत हो गए हैं। वे दो प्रकार के हैं, क्रोधादि कषाय संबंधी संख्यात उपयोग वाले भव परिवर्तनवार और असंख्यात उपयोग वाले भव परिवर्तनवार। उनमें से क्या एक कषाय संबंधी संख्यात उपयोग वाले भव बहुत है या असंख्यात उपयोग वाले भव बहुत है? क्या कहना चाहते हैं? अतीत काल में छोटी आयु में तो संख्यात परिवर्तन हो गए, और ये पल्लवों की सागरों की आयु है तो असंख्यात परिवर्तन हो गए, तो कौन से भव ज्यादा किए उसमें, संख्यात बार वाले कि असंख्यात बार वाले, ये पूछ रहे हैं। इस प्रकार स्वस्थान की अपेक्षा और परस्थान की अपेक्षा जो अल्पभूत विधान है वह इस गाथा के उत्तरार्ध में प्रतिबद्ध है। उसके तो विस्तार से चर्चा आएगी, पहले तो गाथा सूत्र बता रहे हैं यहाँ पर, सूत्र गाथा, और उसके आधार से जो सूत्र बनेंगे उसका जो विवेचन होगा वो चलेगा। शंका, इस प्रकार का अर्थ यहाँ कैसे उपलब्ध होता है? समाधान, एकमीय उपयोगे, इस प्रकार यहाँ पर आया हुआ एक शब्द नाना काल संबंधी एक कषाय विषयक अनेक उपयोगों में से, यतः जाति द्वारा प्रत्येक का वाचक है, इसलिए एक भव की मुख्यता से संख्यात और असंख्यात भेद वाले अतीत काल विषयक एक कषाय संबंधी अनेक उपयोगों में कितने भव होते हैं, कौन थोड़े होते हैं और कौन बहुत होते हैं, इस प्रकार सूत्र के अर्थ का अवलंबन करने पर प्रकृत अर्थ की उपलब्धि विरोध को प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार ये दो अर्थ इस गाथा सूत्र में प्रतिबद्ध हैं। पहले भव को आधार बनाया, उपयोग को आधेय बनाया, फिर उपयोग को आधार बनाया और अतीत भवों को आधेय बनाया। गाथा के इस उत्तरार्ध का व्याख्यान इस प्रकार करने वाले भी हैं, यानी उसका अलग पद्धति से भी व्याख्यान करते हैं। यथा एकमीय वो जोगे ऐसा कहने पर एक कषाय विषयक नाना काल संबंधी अनेक उपयोगों का ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु अंतर्मूर्त वाले काल वाले एक ही उपयोग का ग्रहण करना चाहिए। पुनः उसमें कितने भव होते हैं ऐसा पूछने पर जघन्य रूप से एक भव होता है और उत्कृष्ट रूप से दो भव होते हैं ऐसा कहना चाहिए। यानी उसका अंतर्मूर्त चल रहा है उसमें कितने भव है, उस अंतर्मूर्त काल में कितने भव हो गए ऐसा पूछ रहे, तो वहाँ कहते हैं जघन्य एक और उत्कृष्ट से दो। वह कैसे? समाधान, एक तिर्यंच या मनुष्य क्रोध कषाय को पूर कर अंतर्मूर्त मुँह के ऊपर रफाड़ देना। अंतर्मूर्त काल तक रहा, पुनः अविनष्ट हुए उसी क्रोध कषाय संबंधी उपयोग के साथ, उपयोग उसी क्रोध कषाय में चल रहा है उसी के साथ नारकियों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उसी कषाय के साथ अन्य पर्याय में जाने पर एक कषाय संबंधी उपयोग में दो भव प्राप्त होते हैं। पहला जो अर्थ किया था तो अनेक भवों में वो जो संख्या या असंख्या जो उपयोग होते हैं, तो कौन से उपयोग में कितने भव किए ऐसा पूछा। उसी का दूसरे पद्धति से ये अन्य अर्थ भी उन्होंने बताया। इस प्रकार उसी कषाय के साथ अन्य पर्याय में जाने पर एक कषाय संबंधी उपयोग में दो भव प्राप्त होते, अन्यथा एक ही भव प्राप्त होता है। अब अवसर प्राप्त तीसरी गाथा का अवतार करते हैं। यथा ये 65 नंबर की जो गाथा ऊपर बताई है, उवजो गणाओ कम्मिक सायम्मिके आहोन्ति कदरिस्से च गदीये केवलियावगणाहोन्ति। किस कषाय में कितनी उपयोग वर्गणाएं होती है नया नया अभी कुछ सीखने को मिलेगा। उपयोग की भी वर्गणा बताई, तो किस कषाय में कितनी उपयोग वर्गणाएं होती है तथा किस गति में कितनी उपयोग वर्गणाएं होती है, ये तो मूल गाथा है, अभी उसका अर्थ बताएंगे। यह तीसरी गाथा है। अब इस गाथा के अर्थ का कथन करने पर उपयोग वर्गणाएं दो प्रकार की होती है। कालोपयोग वर्गणा और भावोपयोग वर्गणा, उनके स्वरूप का निर्देश आगे करेंगे। उन दोनों ही प्रकार की वर्गणाओं की प्ररूपणा, प्रमाण और अल्प बहुत्व ओघ और आदेश से अलग अलग इस सूत्र, इस गाथा सूत्र में निबद्ध है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। एक प्रमाणानुगम ही इस गाथा में निबद्ध है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। अरे मात्र प्रमाण बताना इसका, इस गाथा का हेतु नहीं है, या उसमें मात्र उतना ही गर्भित नहीं है, क्योंकि प्ररूपण और अल्पभूतव के अविनाभावी प्रमाणानुगम का निर्देश करने से उनका भी यहाँ अंतर्भाव देखा जाता है। यहाँ मात्र कितनी है ऐसा पूछा है, उससे उसकी प्ररूपणा भी सिद्ध होती कि वो होती है, और अल्पभूतव भी होता है कौन सी कम है कौन सी ज़्यादा। उपयोग वर्गणाएँ हैं गाथा के इस पूर्वार्ध द्वारा कालोपयोग वर्गणाओं और भावोपयोग वर्गणाओं के प्रमाण की प्ररूपणा ओघ से सूचित की गई है। तथा कदरिस्से च गदीये गाथा के इस उत्तरार्ध द्वारा भी उन्हीं उपयोग वर्गणाओं की आदेश प्ररूपणा सूचित की गई है, यानी कौन से गतियों में कितनी होती है। इसलिए इस प्रकार के अर्थ विशेष का कथन करने के लिए यह गाथा अवतीर्ण हुई है, यह सिद्ध हुआ। अब चौथी गाथा का अवतार करेंगे। यथा ये सात गाथाएं बताएंगे, फिर ये सब प्ररूपणा कौन से कषाय में उपयोग कितने काल तक चला है, यानी जब तक जीव का क्रोध कषाय चल रहा है तो उसमें उसका उपयोग, ज्ञान उसमें लगा है,
ज्ञान लगा है कि क्रोध रूप हो रहा है।
ज्ञान क्रोध रूप नहीं होता है, परंतु क्रोध कषाय
परिणामित हो रहा है,
क्रोध कषाय चल रही है ना, हाँ। तो उसका क्रोध रूप उपयोग चल रहा है। अब 66 नंबर की गाथा ऊपर जो लिखी है, एकमियानुभागे एककसायमेक कालेन उवजुक्ता काच गदी विसरिसम उवजुज्जदे काच। एक अनुभाग में और एक कषाय में एक समय में कौन सी गति सदृश रूप से उपयुक्त होती है और कौन सी गति विसदृश रूप से उपयुक्त होती है। यह चौथी गाथा है। अब इसका अर्थ कथन करने पर दो उपदेशों के द्वारा इसका व्याख्यान करते हैं, यानी इसमें दो उपदेश प्राप्त है। उनमें से अप्रवाह्यमान उपदेश, प्रवाह्यमान यानी मेरे ख्याल से वो प्रवाह रूप से जो चला आ रहा है वो उपदेश, यानी वो जो परंपरा धारा जो चल रही उपदेश की, दक्षिण अभी तक कहीं, हाँ यहाँ दो है बस। अप्रवाह्यमान उपदेश के अनुसार कथन करने पर जो परंपरा से नहीं चला आया है, किसी आचार्य विशेष ने अपना मत मांडा है, उसको अप्रवाह्यमान कहेंगे। कथन करने पर एकम्य अनुभागे एक कषायम्य, ऐसा कहने पर जो कषाय है वही अनुभाग है और जो अनुभाग है वही कषाय है। इस प्रकार इस अभिप्राय के अनुसार जो क्रोध मान माया और लोक परिणाम है वही अनुभाग है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों में एकत्व विवक्षा का अवलंबन किया गया है। यानी एकत्व विवक्षा से क्रोध है वही अनुभाग है, ऐसा यहाँ पर अर्थ लिया गया। इसलिए अनुभाग संज्ञा वाले एक ही कषाय में एक समय में उपयुक्त हुई कौन सी गति है, किस गति में क्रोधादि कषायों में से किसी एक कषाय में ही एक समय में उपयुक्त हुए सब जीव पाए जाते हैं। क्या कहना चाहता है, क्या ऐसा होता है कि उस विषय पर्टिकुलर गति मान लेते नारकी है, तो जितने नारकी है वो सारे ही विशिष्ट किसी समय में क्या एक ही कषाय रूप से हो सकते हैं, ये पूछा गया। अंतर्मूर्त है ना, अभी हम कुछ ओपिनियन नहीं देंगे, अभी हम सर्वज्ञ नहीं हुए तो ये हम जानेंगे इसमें से। तो अनुभाग संज्ञा हमने क्रोधादि को अनुभाग कहा, तो एक ही किसी कषाय में पर्टिकुलर कषाय में एक ही समय में उपयुक्त ऐसी कौन सी गति है, किस गति में क्रोधादि कषाय में से किसी एक कषाय में ही एक समय में उपयुक्त हुए सब जीव पाए जाते, सब की बात है, यह यहाँ पर पृच्छा की गई है। विसरिसम वजुज्जदे काच, ऐसा कहने पर दो तीन या चार कषायों में एक समय में उपयुक्त हुई कौन सी गति होती है, इस प्रकार की यहाँ पृच्छा की गई है। ऐसी कौन सी गति है जो दो कषायों में उपयुक्त है जीव, या तो इस कषाय में या तो उसमें या तीन में या चार में। यहाँ गाथा में एक कालेण ऐसा कहने पर एक समय में ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। यदि विवक्षित गति में सब जीव राशि एक समय में एक ही कषाय रूप से परिणत होवे, परिणत करना बरा, तो सदृश उपयुक्त संज्ञा वाली वह जीव राशि कहलाती है। सदृश उपयुक्त, उसको सदृश उपयुक्त कहेंगे, अन्यथा विसदृश उपयुक्त संज्ञा वाली कही जाती है। यानी जब सभी उस मार्गणा के सभी जीव एक ही कषाय रूप से परिणत होते हैं, उपयोग होते हैं उसको, तो उसको सदृश उपयुक्त संज्ञा कहेंगे, अन्यथा विसदृश उपयुक्त यानी अन्य अन्य कषायों में उपयोग परिणत हुआ है, क्योंकि जीव समूह से भिन्न गति नहीं पाई जाती। गतिकार तो उसमें रहने वाले जीव किस में किस कषाय रूप से परिणत है। अब प्रवाह्यमान उपदेश के अनुसार वो कौन सा था, अप्रवाह्यमान था। ये प्रवाह्यमान उपदेश के अनुसार यहाँ कथन करने पर अन्य कषाय है और अन्य अनुभाग है, वहाँ कषाय को ही अनुभाग कहा था, यहाँ कहते अनुभाग अन्य है और कषाय अन्य है। इस प्रकार दोनों में भेद विवक्षा करके, वो अभेद विवक्षा थी, ये भेद विवक्षा है। सूत्र के अर्थ को घटित करते हैं, यथा एकम्य अनुभागे ऐसा कहने पर उसका अर्थ एक कषाय उदय स्थान लेना चाहिए। कषाय उदय स्थान किसको कहेंगे?
जो कषाय का उदय,
हाँ कषाय के उदय स्थान यानी वो
कितने,
हाँ उदय में आने वाले कर्मों की बात है वहाँ। अनुभाग उदय, किस अनुभाग रूप से उदय में आ रहा है? समझे ना, जितना अनुभाग का उदय वैसा उतना क्रोध चलेगा वहाँ पर। या हम ऐसा भी कहते हैं जैसा जीव का परिणाम है विशुद्ध, तो वह मंद अनुभाग रूप से उदय में आता है। तो वहाँ पर कषाय को ही अनुभाग कहा था, यहाँ कषाय के उदय स्थान को अनुभाग कहा है। अनुभाग स्थान ये कषाय का उदय स्थान वो कारण होगा और कषाय वो कार्य होगा। एक कषाय में ऐसा कहने पर क्रोधादि में से अन्यतर कषाय को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अनुभाग से कषाय में कथनचित भेद पाया जाता है। कथनचित है ना, किसी अपेक्षा से भेद विवक्षा करने पर। एक काले न ऐसा कहने पर एक कालोपयोग वर्गणा का ग्रहण करना चाहिए। ये वर्गणा का भी उन्होंने बताया नहीं है, उन्होंने क्या कालोपयोग वर्गणा और दूसरा कौन सा बताया था? भावोपयोग, बहुत अच्छा। इसलिए एक कषाय के एक कषाय उदय स्थान में और एक कषायोपयोग स्थान में सदृश रूप से उपयुक्त कौन सी गति होती है, ऐसा यहाँ पृच्छा का संबंध करना चाहिए। यहाँ पर पूरे वाक्य का अर्थ यह है कि क्रोधादि कषायों में से एक एक कषाय के असंख्यात लोक प्रमाण कषाय उदय स्थान, कषाय उदय स्थान एक एक कषाय के कितने होते हैं तो असंख्यात लोक प्रमाण, और संख्यात आवली प्रमाण कषाय उपयोग स्थान होते हैं। संख्यात आवली यानी अंतर्मूर्त, कषाय उपयोग स्थान यानी कितने समय तक वो बढ़ते हुए जघन्य समय से उत्कृष्ट समय तक हम उसको कषाय उपयोग स्थान कहेंगे। उनमें से एक कषाय के एक कषाय उदय स्थान में और कषाय संबंधी कालोपयोग स्थान में एक समय में उपयुक्त हुई कौन सी गति है? क्या सब जीवों का एक साथ उस प्रकार का परिणाम संभव है या नहीं, ऐसी पृच्छा की है। पहले जो बात बताई थी वही बात यहाँ पर है, इसको हम प्रवाह्यमान उपदेश कहा, वहाँ अप्रवाह्यमान कहा, वहाँ कषाय को ही अनुभाग कह दिया। और फिर क्या सभी किसी जीव के सभी जीव एक ही कषाय रूप से परिणत हो सकते, ये पूछा गया। अब यहाँ तो भेद करके दोनों ही बताए कि अनुभाग किसको कहा, तो कषाय के उदय स्थान को अनुभाग कहा और कषाय में उपयुक्त रहने का जो काल है उसको तो कषाय कहा। तो उन्होंने कथनचित भेद करके उसमें कालोपयोग की बात उन्होंने उठाई, उपयोग स्थान कहे वो अलग अलग, एक है उदय स्थान और एक उपयोग स्थान। उपयोग लगातार कितने समय तक रहा उसको उपयोग स्थान कहा। विसरिसम वज्जदे कांच ऐसा कहने पर दो कषाय उदय स्थानों में या तीन कषाय उदय स्थानों में इस विधि से संख्यात या असंख्यात कषाय उदय स्थानों में एक समय में उपयुक्त हुई कौन सी गति होती है, यानी अनेक जीवन की अपेक्षा ये बात है। उसी प्रकार पूर्वोक्त कषाय स्थानों से प्रतिबद्ध दो कालोपयोग वर्गणाओं या तीन कालोपयोग वर्गणाओं से लेकर संख्यात या असंख्यात कालोपयोग वर्गणाओं में एक समय में उपयुक्त हुई कौन सी गति होती है, ऐसी पृच्छा की गई। यहाँ तो केवल प्रश्न ही डाले हैं, ये सारा ही जो विस्तार से विवेचन होगा इस विषय पर, उन्होंने इसके उत्तर तो नहीं दिए। यहाँ गाथा में क्या क्या बताए उसकी बात चल रही है, क्योंकि इन्हीं गाथाओं के आधार से पूरी आगे चूर्णी सूत्र वगैरह और स्पष्टीकरण टीका सब चलेगी। इस प्रकार इस प्रकार के अभिप्राय भेद से संबंध रखने वाले दो अर्थों में यह चौथी गाथा प्रतिबद्ध है, यह सिद्ध हुआ। अब पांचवी गाथा का अवतार करेंगे। यथा यानी चूर्णी सूत्रकार ने पहले सात गाथाएं बताई है और बाद में वो चूर्णी सूत्र लिखेंगे उसके ऊपर, ऐसा लगता है। केवड़िया उजुत्ता सरिसी सुचवगणा कसायेषु केवड़िया च कसाये के च विशिष्टदेकेण। सदृश कषायोपवर्योग वर्गणाओं में कितने जीव उपयुक्त होते हैं तथा चारों कषायों में से एक एक कषाय में कितने जीव उपयुक्त होते हैं और कषायों में उपयुक्त हुए कौन कौन जीव कषायों में उपयुक्त हुए अन्य किन जीवों से विशेषताओं को लिए हुए पाए जाते हैं। अनेक प्रश्न पूछे, क्या कहना चाहते हैं? यह गाथा कषायों में उपयुक्त हुए जीवों के आठ अनुयोग द्वारों को सूचित करती है। वह कैसे? तो कहते हैं केवड़िया व जुत्ता। गाथा के इस प्रथम अवयव द्वारा कषायों में उपयुक्त हुए जीवों के द्रव्य प्रमाणानुगम का सूचन किया जाता है। द्रव्य प्रमाणानुगम किसको कहते हैं मंजूबेन? संख्या को, तो है कहते कितने हैं जीव ऐसे केवड़िया ने, कितने केवड़िया उपयुक्त ने उपयुक्त जीव कितने हैं? तो किसमें उपयुक्त? तो विशिष्ट कषाय में, क्योंकि क्रोधादि कषायों में उपयुक्त हुए जीव ओघोर आदेश की अपेक्षा कितने हैं, इस प्रकार यहाँ सूत्रार्थ का अवलंबन लिया गया तथा इसी वचन द्वारा सत प्ररूपणा सूचित की गई है। सत संख्या आगे जो आते हैं ना, सत यानी वो है इतना बताए कि सभी कषायों में उपयुक्त जीव है, बस है इतना बता दिया, वो सत प्ररूपणा हो गया। ऐसा ग्रहण करना चाहिए क्योंकि सत प्ररूपणा के बिना द्रव्य प्रमाणानुगम की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि है ऐसा नहीं होगा तो संख्या बताने का क्या प्रयोजन? जब संख्या बता रहे तो उसका अर्थ ही होता है वो है, ये सिद्ध हुआ, यानी उसमें वो सत प्ररूपणा आ गई। क्षेत्रानुगम और स्पर्शनानुगम का यहीं पर संग्रह करना चाहिए क्योंकि वे द्रव्य प्रमाणानुगम पूर्वक होते हैं। जब संख्या बताई है तो उसमें वो, जब संख्या थी तो जीव कौन है कहाँ रहते हैं उसमें बात आ गई, इसलिए उनका द्रव्य प्रमाणानुगम में अंतर्भाव होने में कोई विरोध नहीं है, यानी इसी में क्षेत्रानुगम और स्पर्शनानुगम निकलता है। इस प्रकार सूत्र के इस प्रथम अवयव में चार अनुयोग द्वार अंतर्भूत है। कौन सी? सब संख्या, क्षेत्र और स्पर्शन तथा सरिसी सुच वगणा कषायेषु। इस प्रकार गाथा सूत्र के इस दूसरे अवयव में कषायों में उपयुक्त हुए नाना जीव और एक जीव विषयक कालानुगम सूचित किया गया, क्योंकि सरिसी अर्थात समान जो कषाय उपयोग वर्गणाएं हैं उनमें कितने काल तक जीव उपयुक्त होते हैं, इस प्रकार अध्याहार करके सूत्र के अर्थ का व्याख्यान किया है। ये अर्थ बराबर करना, अर्य दूसरा है अर्थ का। पुनः यहीं पर अंतरानुगम का भी अंतर्भाव कहना चाहिए क्योंकि कालानुयोग द्वार और अंतरानुयोग द्वार का परस्पर अनुगतपना देखा जाता है। अनुगत यानी टू फॉलो, यानी काल के द्वारा अंतर सिद्ध होता है, अंतर के द्वारा काल सिद्ध होता है, यानी कितने काल तक उपयुक्त रहता है तो काल आया और फिर भी अन्य कषाय रूप हो जाएगा, फिर वापस इसमें आएगा तो अंतर आ जाएगा। केवड़िया च कषाय इस सूत्र के इस अवयव द्वारा चारों कषायों में उपयुक्त हुए जीवों के भागा भागानुगम का कथन किया गया है, यानी कितने भाग प्रमाण है इस तरह, क्योंकि सब जीवों का कितना कितना भाग एक एक कषाय में उपयुक्त है। जैसे हमने कषाय मार्गणा में देखा ना, एक कषाय में कितने जीव है एट ए टाइम, उसको यहाँ कितने जीव उपयुक्त है ऐसा कह दिया। इस प्रकार यहाँ सूत्रार्थ के संबंध का अवलंबन लिया गया है। के च विशिष्टे के न, इस द्वारा भी कषाय में उपयुक्त हुए जीवों के अल्पभूतव का कथन किया गया है। कषायों में उपयुक्त हुए कौन कौन जीव, कषायों में उपयुक्त हुई किस जीव राशि के साथ सन्निकर्ष को प्राप्त होकर किस गुणकार या भागाहार के द्वारा विशेषता को प्राप्त होते हैं अर्थात अधिक होते हैं, इस प्रकार यहाँ सूत्रार्थ का अवलंबन लिया जाता है। यानी उसी समय अन्य कौन से कषाय वाले जीव कितने हैं, गुणकार रूप में है कि भागा रूप में, तो या कितने भाग प्रमाण है, इस प्रकार इस गाथा सूत्र के द्वारा कषायों में उपयुक्त हुए जीवों के द्रव्य प्रमाणानुगम, कालानुगम, भागा भागानुगम और अल्प भूतवानुगम का मुक्त कंठ कथन किया है तथा शेष चार अनुयोग द्वारा सूचित किए गए हैं। क्योंकि द्रव्य प्रमाणानुगम से सत प्ररूपणा सिद्ध होती है, क्षेत्र और स्पर्शन भी वहीं पर होता है, काल के द्वारा अंतर भी सिद्ध होता है, देखा ना हमने। यानी द्रव्य प्रमाणानुगम के साथ सत क्षेत्र और स्पर्शन चार वहां हो गए, काल अंतर ये दो छह हो गए, अल्प भूत और भागा भाग ये आठ हो गए। अब छठी गाथा से संबंध रखने वाले अर्थ का कथन करने के लिए अवतार करेंगे यथा। जे जे जम्मी कसाए उवजुत्ता किन्नु भूद पुवाते होहिंति चौवजुत्ता एवं सौवत्त बोधवा। जो जो जीव जिस कषाय में उपयुक्त है वे सब जीव क्या अतीत काल में उसी कषाय में उपयुक्त रहे हैं तथा क्या आगामी काल में भी उसी कषाय में उपयुक्त रहेंगे, इस प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए, ये पृच्छा है। हाँ, प्रश्न चिन्ह चाहिए था या तो उद्गार वाचक। वर्तमान समय में जो अनंत जीव क्रोधादि कषायों में उपयुक्त है वे सब उतने ही जीव अतीत और अनागत काल में भी विवक्षित कषायों के उपयोग रूप से परिणमन करते रहे हैं या करते रहेंगे, इस बात की संभावना और असंभावना का अनुसंधान करने के लिए यह गाथा उत्तीर्ण हुई है। क्या वे उतने जीव रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, ये तो पूछा गया है, इसका उत्तर तो आगे मिलेगा। शंका, वह कैसे, यानी ये अर्थ कहाँ से निकाला ये पूछ रहे हैं। जे जे जम्मी कसाए, ऐसा कहने पर जो जो जीव वर्तमान समय में क्रोधादि में से अन्यतर जिस कषाय में उपयुक्त दिखलाई देते हैं, किन्नु भूदपुवाते, न्यूनाधिकता से रहित वे सब जीव क्या अतीत काल में विवक्षित कषाय में उपयुक्त थे, अर्थात अतीत काल में एक ही समय में उतने ही वे सब जीव क्या उसी कषाय के उपयोग से परिणत रहे हैं, यह पूछा कीजिए। होहिंति च उवजुत्ता, इस वचन द्वारा अनादिकाल विषयक पृच्छा का निर्देश किया गया है। यहाँ यद्यपि आगे चूर्णी सूत्र में अनागत काल विषयक प्ररूपणा नहीं की गई है, तो भी यह अर्थ इस गाथा सूत्र के उत्तरार्ध में निबद्ध है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मुक्त कंठ होकर इस गाथा सूत्र में निर्देश उपलब्ध होता है, यानी स्पष्ट रूप से यहाँ उन्होंने बता दिया। चूर्णी सूत्र में तो अतीत काल विषयक प्ररूपणा से ही वह गतार्थ है, इसलिए उसका निर्देश नहीं किया है, यानी अतीत काल की प्ररूपणा से वो सिद्ध हो जाती है बात, ये अलग से उसका निरूपण नहीं किया है, अतः इसमें कुछ भी विरुद्ध नहीं है। इस प्रकार यह ओ प्ररूपणा विषयक पृच्छा का निर्देश है। पुनः आदेश से भी गति आदि मार्गणाओं में इस अर्थ का अनुसंधान कर लेना चाहिए, इस प्रकार इस बात का कथन करने के लिए यह वचन कहा है, एवं सौवत्थ बोद्धवा, गाथा की बात है। इस प्रकार इस छठे गाथा सूत्र में निबद्ध अर्थ का कथन करके अब सातवें गाथा सूत्र में निबद्ध अर्थ का कथन करने के लिए अवतार करते हैं। ये पूरी उपयोग प्ररूपना है, वो तो ये सात सूत्र गाथाओं के ऊपर आधारित है। उवजोग वगणाहिय अविह्यह काहि विरहिदं चावी पडम समयो वजुत्तेहिं चरिम समये च बोधवा। कितनी उपयोग वर्गणाओं से कौन स्थान युक्त पाया जाता है और कौन स्थान रहित पाया जाता है, अविरहिदम विरहिदम, तथा प्रथम समय में उपयुक्त जीवों से लेकर अंतिम समय तक जानना चाहिए। अब इसका अर्थ करेंगे। जो यहाँ की सातवीं और एक्चुअली वो 69 नंबर की गाथा है, कषाय पाहुर के 69 नंबर की गाथा। यह सातवीं गाथा पूर्वार्ध के द्वारा, पूर्वार्ध है ना पहली लाइन, चार कषायों के कालोपयोग वर्गणाओं में और भावोपयोग वर्गणाओं में जीवों से रहित और सहित स्थानों का ओवर आदेश की अपेक्षा कथन करने के लिए आई है। तथा उत्तरार्ध के द्वारा भी चार कषायों से उपयुक्त जीवों के चारों गतियों के संबंध से तीन श्रेणियों के द्वारा अल्पभूतव का कथन करने के लिए आई है। इस प्रकार इन दो अर्थों में यह गाथा निबद्ध है। अब इसके पदच्छेद द्वारा, पदच्छेद ने अलग अलग उसके जो पद है, अलग अलग शब्द है, उसको भेद करके उसका एक एक का अर्थ समझाएंगे। कुछ अर्थ का विवरण करते हैं। यथा, ये यया हुआ, यथा उवजोग वगणाहिय, यहाँ उपयोग वर्गणा पद के ग्रहण करने से दो प्रकार की उपयोग वर्गणाओं से युक्त जीवों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि साहचर्य से उस शब्द द्वारा प्रकृत अर्थ का ग्रहण हो जाता है, ऐसा न्याय है। दो प्रकार ऊपर बता ना, कालोपयोग वर्गणा और भावोपयोग वर्गणा। इसलिए काही यानी कितनी ही उपयोग वर्गणाओं से अविरहिदम युक्त कौन सा स्थान प्राप्त होता है, तथा विरहिदम चावी उपयोग वर्गणाओं से रहित कौन स्थान प्राप्त होता है, इस प्रकार सूत्रार्थ का संबंध करना चाहिए। इसलिए यह तात्पर्य हुआ कि उपयोग वर्गणाएं जो दो प्रकार की हैं, कषाय उदय स्थान और उपयोगाध्व स्थान, इनमें कितने कालोपयोग वर्गणा जीवों से और भावोपयोग वर्गणा जीवों से कौन स्थान युक्त प्राप्त होता है और कौन स्थान उन दो प्रकार की वर्गणा से युक्त जीवों से रहित प्राप्त होता है, इस प्रकार शून्य और अशून्य स्थानों का ओह और आदेश की अपेक्षा कथन करने के लिए यह गाथा का पूर्वार्ध आया है। तथा पढ़म समयो व जुत्ते हिम गाथा के इस उत्तरार्ध द्वारा भी गतियों का आलंबन कर क्रोधादि कषायों में उपयुक्त हुए जीवों के तीन प्रकार की श्रेणी के माध्यम से अल्प बहुत्व की प्ररूपणा सूचित की गई है। आठ अनियोग द्वारों में पूर्व में कहे गए अल्प बहुत्व के साथ इसका पुनरुक्तपना हो जाएगा, ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर सामान्य रूप से कहे गए अल्पभूतों का तीन प्रकार की श्रेणियों को विशेषण बनाकर फिर भी कथन करने पर पुनरुक्त दोष संभव नहीं है। वहां तो सामान्य से अल्पभूतों बताया, यहाँ तीन श्रेणी कुछ करके उसका कथन होगा। अथवा वहां कहे गए संचय अल्पभूतों के साधन रूप से प्रवेश अल्पभूतों का कथन करने के लिए यह वचन आया है। संचय ने लगातार अंतर्मूर्तों पे कितने होते उसको संचय कहेंगे, और उसमें नए नए हर समय जो प्रवेश करते उसको प्रवेश कहेंगे। इसलिए कोई दोष नहीं है। यहाँ गाथा के उत्तरार्ध में इस प्रकार पद संबंध करना चाहिए, नरकादि गतियों में, गतिरियों में हुआ, गतियों में प्रथम समय में उपयुक्त हुए जीवों से लेकर अंतिम समय में उपयुक्त हुए जीवों तक जीव बोद्धव अर्थात जानने चाहिए। वहां पढ़म समयोव जुत्ते ही ऐसा कहने पर यह वचन विशेष सवत्थ हुआ इस प्रकार इस प्रथम पद की अपेक्षा करता है, क्योंकि समय शब्द पद का वाची ग्रहण किया गया है। चरिम समय च बोद्ध हुआ इस प्रकार यह वचन भी अंत में कही गई सबसे बहुत राशि की अपेक्षा करता है। इसलिए एक गति में कषाय में उपयुक्त हुए जीवों के स्तोक पद और बहुत पद को जानकर जीव विषयक अल्प बहुत्व करना चाहिए, इस प्रकार यह यहाँ पर भावार्थ है। वहाँ नरक गति में प्रथम समय में उपयुक्त हुए लोभ कषाय वाले जीव और अंतिम समय में उपयुक्त हुए क्रोध कषाय वाले जीव, देवगति में क्रोध कषाय में उपयुक्त हुए जीव प्रथम और लोभ कषाय में उपयुक्त हुए जीव अंत में, तथा तिर्यंच और मनुष्य गति में मान कषाय में उपयुक्त हुए जीव प्रथम कहने चाहिए तथा सबसे अंत में लोभ कषाय में उपयुक्त हुए जीव कहने चाहिए। यानी वो अल्प बहुत कौन से कषाय में होते हैं या पहले वहाँ उस गति में कौन सा कषाय पहले होता है, इसकी बात यहाँ चल रही है। शंका, यहाँ पर गाथा सूत्रों के समाप्त होने पर सात का अंक विन्यास किस लिए किया है? वो ऊपर गाथा में सात लिख के फिर 69 लिखा था ना, तो वो क्यों लिखा है? समाधान, ये सात ही गाथाएं उपयोग अनुयोग द्वार में निबद्ध है, इसलिए सात आंकड़ा वहां लिख दिया है, अन्य नहीं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए गाथा सूत्रों के अंत में सात संख्या का विन्यास किया है। अब इसी का स्पष्टीकरण करने के लिए यह चूर्णी सूत्र कहा है। यानी अभी जो गाथाएं बस बताई, अभी उसके आधार से चूर्णी सूत्र बताएंगे, एक एक शब्दों का अर्थ करेंगे, क्योंकि कितने ही शब्द हमारे लिए नए हैं। उपयोग वर्गणा क्या होती है, कालोपयोग क्या होता है, भावोपयोग क्या होता है, उसकी चर्चा चलेगी। एदाहो सप्त गाहाओ, पहले में पहले चुन्नी सूत्रकार ने सात गाथाएं लिखी और कहते ये सात गाथाएं हैं मूल, क्योंकि ओरिजिन बताया ना उसका, उन्होंने अपने मन से कोई सूत्र नहीं रचे हैं, ओरिजिनल गाथाएं लिखकर फिर उसके आधार से ये सूत्र बताए। एदाहो सप्त गाहाओ, ये सात गाथाएं हैं, उपयोग अनुयोग द्वार में प्रतिबद्ध है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब यथाक्रम इन गाथा सूत्रों के अर्थ का विशेष व्याख्यान करते हुए चूर्णी सूत्रकार ने आगे का प्रबंध कहा। यथाक्रम यानी जैसे पहले से सातवीं गाथाओं का जो विषय है वो यह सूत्रों के द्वारा, चूर्णी सूत्रों के द्वारा बताएंगे। एदासिन विहासा कायोवा, इनकी विभाषा करनी चाहिए। शंका, विभाषा किसे कहते हैं? समाधान, गाथा सूत्रों के द्वारा सूचित हुए अर्थ का विशेष रूप से भाषण, विभाषा, विशेष भाषा। गाथा सूत्रों के द्वारा सूचित हुए अर्थ का विशेष रूप से भाषण करने को विभाषा कहते हैं। विभाषा का अर्थ विवरण है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। केवचिरम उपजोगो कम्मी कसायम्मी ती एदस पदस्य अथो अद्धा परिमाणम। अब पहली गाथा में जो जो आया था उसकी बात एक एक करके यहाँ समझाएंगे। किस कषाय में कितने काल तक उपयोग रहता है, इस पद का अर्थ अद्धा परिमाण है, अद्धा यानी काल, यानी उपयोग कितने काल तक रहता है। हाँ केवल चिरम उजोगो कमी कसाय मित्ति एदस्त हाँ पदस्थ अथो अद्धा परिमाण पढ़ा था, उसका अर्थ भी पढ़ा हमने हिंदी में। अद्धा शब्द कालवाची, अद्धा का अर्थ ही काल, उसका परिमाण अर्थात प्रमाण अवच्छेद इस पद का अर्थ है, क्योंकि किस कषाय में एक जीव का कितने काल तक उपयोग रहता है इस प्रश्न के अर्थ का अवलंबन लिया गया। पहले हमने पढ़ा था ना वो क्या सागर तक रहता है कि पल्ले तक रहता है कि आवली तक रहता है कि कितना रहता है। तम जहां वह कैसे वह अद्धा परिमाण जहां इन्हें कैसे होता है इस प्रकार पुच्छा की गई है। इस प्रकार पुच्छा के विषय हुए अद्धा परिमाण का ओग से निर्देश सर्वप्रथम करते हैं, यानी कौन से कषाय में कितने काल तक जीव उपयुक्त रहता है उस काल का प्रमाण क्या है ओग की अपेक्षा और आदेश की अपेक्षा। पहले यहाँ तो ओग की बात चलेगी। कोधद्धा माणद्धा मायद्धा लोहद्धा जहन्याओ भी उक्कसियाओ भी अंतोमोत्तम, जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त है। क्रोध कषाय का काल कोधद्धा अध्याय है ना, मान कषाय का काल, माया कषाय का काल और लोभ कषाय का काल जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त है। क्रोध मान माया और लोभ का उपयोग काल जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त प्रमाण है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, क्रोधादि कषायों का उपयोग काल अंतर्मूर्त से अधिक प्रमाण वाला क्यों उपलब्ध नहीं होता। नहीं, क्योंकि कषायों के परावर्तन के बिना उससे अधिक काल तक उनका अवस्थान असंभव है। यानी कषायों का परावर्तन हुआ ही नहीं और वो लगातार एक ही चलता रहे ऐसा नहीं होता। जैसे योग में हम परिवर्तन देखते पलटता रहता है, परंतु एक इंद्रियों में वो एक ही औदारिक का युग चालू हो जाएगा तो फिर वो अंत तक रहेगा। शुरुआत में भले औदारिक मिश्र था, बाद में जितनी आयु है तो एक ही योग रहेगा, कोई परिवर्तन होता नहीं है। ऐसा किसी एक कषाय में रहेगा तो कहते ऐसा संभव नहीं है, अंतर्मूर्त उसका बात उसकी बात है, उससे अधिक नहीं। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? इसी सूत्र से जाना जाता है। शंका, क्रोधादि कषायों में उपयुक्त हुए जीवों का मरण और व्याघात से जघन्य काल एक समय मात्र जीव स्थान आदि में कहा है, वह यहाँ पर क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? अन्यत्र बात आती है ना, मरण की अपेक्षा से भी होता है और व्याघात है ना, तुम्हें मान माया लोग परिणाम चल रहा है और वो बीच में नष्ट हुए नहीं, वो तो पलट गया
दूसरा,
तो वहां तो क्रोध पर आता है वापस, तो उसको व्याघात कहते हैं। तो व्याघात से भी एक समय कहाँ है कहीं जीव स्थान में तो उसकी बात आती है, यहाँ पर उस जीव स्थान ने धवला दिया है। खुद्दा बंद, हाँ बराबर है, खुद्दा बंद धवला में ही खुद्दा बंद ने लिया। नहीं, क्योंकि चूर्णी सूत्रों के अभिप्राय अनुसार उस प्रकार काल को स्वीकार करना संभव नहीं है। विशेषार्थ, खुद्दा बंद में ये आया, खुद्दा बंद धवला की बात है। एक जीव की अपेक्षा क्रोध कषाय का मरण से तथा मान माया और लोभ कषाय का मरण और व्याघात दोनों प्रकार से, क्रोध में मात्र मरण लिया है और अन्य कषाय पलट कर व्याघात हुआ तो क्रोध पर आती है लौट कर, तो व्याघात मरण और व्याघात वहां दोनों ही कारण है। जघन्य काल एक समय बतलाया है, जीव स्थान में भी यह प्ररूपणा इसी प्रकार से की गई है, किंतु चूर्णी सूत्रों में इसे स्वीकार नहीं किया गया है, यह उक्त शंका समाधान का तात्पर्य है। यानी वो बात यहाँ नहीं ली है, बस इतना ही। कौन गलत है कौन सही है वो बात नहीं है, यहाँ उसकी अपेक्षा यहाँ नहीं स्वीकार की। इस प्रकार ओग से क्रोधादि कषायों में उपयुक्त हुए जीवों के जघन्य और उत्कृष्ट काल का निर्देश किया। अब आदेशगत विशेष का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। गदीसु निखमण पवेशन एक समयो हो, क्या कहना चाहते हैं? गतियों की अपेक्षा, अभी उसका कोई क्रोध करते करते मर गया और अन्य गति में उत्पन्न हुआ, उसका भी क्रोध का एक समय बाकी है अंतर्मूर्त का, यथायोग्य अंतर्मूर्त का, तो यहाँ आकर इस गति में भी होगा ना,
एक समय के लिए होगा,
तो जन्मते समय एक समय घटित हो सकता है और मरण के समय में भी निष्क्रमण और प्रवेश, प्रवेश यानी वहाँ जन्म लिया, निष्क्रमण यानी मर गया, कषाय पलट कर विशिष्ट कषाय में आ गया और मरण हो गया, तो गति मार्गणा की अपेक्षा एक समय घटित होता है क्योंकि वो गति बदल गई, उस गति की अपेक्षा एक समय हुआ। और हम कहेंगे ओग से एक समय नहीं हुआ क्योंकि अन्य गति में वो चल रहा है, कषाय गति में घटित होता है। तो गतियों में निष्क्रमण और प्रवेश की अपेक्षा जघन्य काल एक समय होता है। सर्वप्रथम निष्क्रमण की अपेक्षा एक समय काल का कथन करते हैं। निष्क्रमण यानी वहां से गमन, अन्यत्र निष्क्रमण निकल जाना। एक नारकी मानादि अन्यत्र कषाय में उपयुक्त होकर स्थित है, एक समय आयु में शेष है, तब क्रोध कषाय के उपयोग से परिणत हो गया तथा एक समय तक रहकर वहां से निकला और तीर्यंच या मनुष्य हो गया। इस प्रकार क्रोध कषाय में उपयुक्त होने का निष्क्रमण की अपेक्षा जघन्य काल एक समय मात्र प्राप्त हो गया। अब प्रवेश की अपेक्षा कहते हैं। एक तीर्यंच या मनुष्य क्रोध कषाय के साथ स्थित है, क्रोध कषाय के काल में एक समय शेष है, तब मरकर नारकियों में उत्पन्न हुआ। प्रथम समय में क्रोध में उपयुक्त होकर स्थित रहा तथा दूसरे समय में अन्य कषाय रूप से परिणत हो गया। इस प्रकार प्रवेश का आश्रय कर एक समय काल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार शेष कषायों के एक समय मात्र काल की योजना कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार शेष गतियों में भी निष्क्रमण और प्रवेश की अपेक्षा एक समय प्रमाण काल की प्ररूपणा करनी चाहिए। तब प्रथम गाथा के पूर्वार्ध में गाथा बराबर करना। प्रथम गाथा के पूर्वार्ध में कहे गए एक अर्थ का व्याख्यान होता है। अब वही पर निबद्ध दूसरे अर्थ का व्याख्यान करने के लिए कहते हैं, को व केन ही ओत्ति एदस्य पदस्य अर्थो अद्धानमप्पा बहुवम्। किस कषाय का काल किस कषाय के काल से अधिक है? पहले तो कौन से कषाय का कितना काल है चारों का पूछा था, तो जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त बताया और गतियों की अपेक्षा निष्क्रमण और प्रवेश में एक समय बन सकता है, इतना बताया सूत्र में ही बताया। अब आगे अभी जो हमने सूत्र पढ़ा उसका अर्थ है, किस कषाय का काल किस कषाय के काल से अधिक है, इस पद का अर्थ कषायों के काल का अल्पभूतव है। क्या क्रोध में रहने का काल ज्यादा है कि मान में, क्या माया में, क्या लोभ में, ये पूछा है। पूर्व में की गई प्ररूपणा द्वारा अंतर्मूर्त प्रमाण रूप से सुनिश्चित क्रोधादि कषायों संबंधी जघन्य और उत्कृष्ट कालों का ओह और आदेश की अपेक्षा जो अल्पभूतव कथन है वह को व के नहीं हो, इस पद का अर्थ है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तम जहां यानी ये जो अल्पभूतव है कषायों के काल का अल्पभूतव वो यहां बताएंगे, वह कैसे, वह अल्पभूतव का विधान किस प्रकार है, इस प्रकार इस सूत्र द्वारा पुच्छा का निर्देश किया गया। ओघेन माणद्धा जहन्निया थोवा, वो से मान का जघन्य काल सबसे स्तोक है, स्तोक है अल्प है, यानी मान कषाय में भी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जो अंतर्मूर्त है तो उसका जो जघन्य काल है वो सबसे छोटा है। इस सूत्र में मानद्धा जघन्यगा ऐसा कहने पर तिर्यंच और मनुष्यों के निर्व्याघात रूप से मान का जघन्य उपयोग काल अंतर्मूर्त प्रमाण लेना चाहिए, क्योंकि अन्य जीवों में ग्रहण करने पर मान का जघन्य काल सबसे स्तोक नहीं बन सकता। मान का जघन्य काल वो भी मनुष्य और तिर्यंचों में लिया, इसलिए मान का जघन्य काल संख्या तावली प्रमाण होकर सबसे स्तोक है यह सिद्ध हुआ। यानी अंतर्मूर्त ही ले रहे हैं, यहाँ तो वो एक समय वाली बात नहीं ले रहे, मार्गणा की अपेक्षा नहीं ले रहे, गतियों की यानी ओग से ही बात चल रही। कोधद्धा जहनिया विशेषाहिया, उससे क्रोध का जघन्य काल विशेष अधिक है। यहाँ पर विशेष का प्रमाण सुगम है, क्योंकि प्रवाह्यमान उपदेश के अनुसार कालों का परस्पर विशेष अंतर्मूर्त प्रमाण है। इसका अर्थ क्या है अश्विन भाई?
ये इसका जघन्य काल से इसका जघन्य काल एक अंतर्मूर्त जा रहा है।
हाँ, कालों का विशेष है, कालों में डिफरेंस। मान का जघन्य काल भी अंतर्मूर्त है, क्रोध का भी अंतर्मूर्त है, तो दोनों कितने समयों से ज्यादा है तो वो भी अंतर्मूर्त से ज्यादा है, डिफरेंस भी अंतर्मूर्त प्रमाण। वो दो चार समयों का होगा ऐसा नहीं है ये कहना चाहते। हाँ, वो कितने प्रमाण में है उसकी बात नहीं, कितने गुना है उसकी बात नहीं है, बस यहाँ तो कहते कि अंतर्मूर्त प्रमाण अधिक है,
तो मिनिमम
उसको विशेष अधिक लिया। विशेष हम अपनी भाषा में नहीं कहेंगे,
नहीं अंतर्मूर्त में अवली ले सकते,
कुछ भी ले सकते यथा योग्य, विशेष अधिक लेना है। विशेष अधिक यानी गुणकार रूप में तो नहीं है, दो गुणा भी नहीं है, विशेष अधिक। उसके संख्यात विभाग प्रमाण भी होगी तो भी विशेष अधिक है।
नहीं अंतर्भूत का प्रमाण अवली लेते इसलिए
ऐसा कुछ नहीं, अवली से भी अधिक हो, मान लेते 1000 अवली होगी और उसमें 900 भी अवली ज्यादा होगी तो विशेष अधिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यदि 1000 में 1000 बढ़ गए तो संख्यात गुना कहेंगे हम, ख्याल में नहीं, इसलिए हम अपनी ओर से उसमें कुछ संख्या मत डालो, क्योंकि ये तो विषय तो केवल ज्ञान गम्य है, हम तो मात्र उसको पढ़ के उसको याद करेंगे या ख्याल में लेंगे समझेंगे। आगे मायद्धा जघन्या विशेष आया, पहले में पहले नंबर किस काल लिया?
मान
का जघन्य अंतर, उससे क्रोध का ज्यादा, उससे माया का, उससे माया का जघन्य काल विशेष अधिक है। हर एक का अपना अपना अंतर्मूर्त है और एक से दूसरे का अंतर्मूर्त बड़ा है, उनका डिफरेंस भी अंतर्मूर्त प्रमाण है, फिर भी यह दो गुना या अधिक नहीं है तो उसको विशेष अधिक में ले लिया। लोबद्धा जघन्या विशेषाया, उससे लोभ का जघन्य काल विशेष अधिक है। ये दोनों ही सूत्र सुगम है। अब ये जघन्य पहले मान, फिर क्रोध, फिर माया, फिर लोभ, अभी ये अल्पभूत और चल रहा है तो कहते हैं मानद्धा उपकस्य संख्यज गुणा, अब यहाँ संख्यात गुणा कह दिया, पहले विशेष अधिक कहा था, तो लोभ से जघन्य से मान का उत्कृष्ट जो है वो संख्यात गुणा है, उससे मान का उत्कृष्ट काल संख्यात गुणा है। यहाँ पर गुणकार तत्प्रायोग्य संख्यात अंक है, तत्प्रायोग्य लिखा, डबल भी नहीं लिखा, यथा योग्य। कोधद्धा उपकस्या विशेषाया, अब उसके उत्कृष्ट से इसका उत्कृष्ट लेना है, वो विशेष अधिक है, उससे क्रोध का उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। शंका, विशेष का प्रमाण क्या है? अंतर्मूर्त मात्र है। मायद्धा उपकस्या विशेषाया, उससे माया का उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। फिर शंका, विशेष का प्रमाण क्या है? समाधान, अंतर मुहूर्त मात्र है। लोभद्धा उपकस्या विशेषाया, उससे लोभ का उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है, यह सूत्र सुगम है। अब यहाँ पर विशेष अधिक का प्रमाण इतना है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। पवाइजंतेन उदेशेन अध्यानम विशेषो अंतो मुहूर्तम, प्रवाह्यमान उपदेश के अनुसार कालों का परस्पर विशेष अंतर मुहूर्त है, यानी डिफरेंस विशेषण दोनों में कितना अंतर है। इस वचन से एक समय मात्र, दो समय मात्र, इस प्रकार जाकर संख्यात समय मात्र विशेष नहीं है किंतु अंतर्मूर्त प्रमाण ही है, इस बात का ज्ञान कराया है। वह अंतर्मूर्त अनेक प्रकार का है, संख्यात आवली प्रमाण, आवली के संख्यात वे भाग प्रमाण, सुनो, तथा आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण, उसको भी अंतर्मूर्त कह सकते हैं। उसमें भी व्याख्यान से विशेष का ज्ञान होता है। इस न्याय के अनुसार आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण परस्पर कषायों के कालों का विशेष है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यहाँ आवली के असंख्यात वे भाग को भी अंतर्मूर्त कह दिया है, हाँ, उसको भी कहने की पद्धति है। ये बात असंक्षेपाध्याय में हमने देखी थी, याद है? आयु बंद होने के पश्चात कुछ काल के बाद मरण होता है, तो मिनिमम कितने काल के बाद होता है, तो वहाँ भी अंतर्मूर्त कहा, पर उसको आवली के असंख्यात वे भाग काल था। हाँ, मत है, वो बात सही है, तो उसको भी अंतर्मूर्त कहा था आवली के असंख्यात वे भाग को। जैसे हमने कहा ना, अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ भी दो मत बता रहे हैं ना। ये तो प्रवाह्यमान उपदेश के अनुसार वो पूछ रहे, क्या संख्यात आवली है, क्या आवली का संख्यात भाग है, क्या आवली का असंख्यात भाग, यानी तीनों को ही अंतर्मूर्त कह सकते, ये बात सिद्ध होती नहीं यहाँ पर? तो यहाँ वो कालों का विशेष कितना है, तो आवली का असंख्यात भाग प्रमाण, क्योंकि पूर्व, हाँ, यहाँ ये भी बात अवली के असंख्यात भाग में हो सकती है, क्योंकि पूर्वाचार्यों का संप्रदाय उसी प्रकार का पाया जाता है। इस प्रकार ओघ से तिर्यंच गति और मनुष्य गति की प्रधानता से अल्पभूत्व कहा, उनकी प्रधानता ली है, फिर भी वो ओघ से कह दिया। अब आदेश की अपेक्षा कथन करने पर तिर्यंच गति और मनुष्य गति में कषायों के काल की अपेक्षा कोई भेद नहीं है, नरक गति में लोभ का जघन्य काल यानी अभी जो ओघ में बताया वही तिर्यंच गति और मनुष्य गति में पाया जाएगा, क्योंकि उन्हीं की अपेक्षा वहां अल्पभूत बताया था। तो क्या पाया जाएगा? सबसे पहले नंबर पर मान का जघन्य काल, फिर क्रोध, फिर माया, फिर लोभ, फिर लोभ के जघन्य काल से मान का उत्कृष्ट काल संख्यात गुणा, फिर बाद में विशेष अधिक विशेष, क्रोध, फिर माया, फिर लोभ। तो यहाँ पर भी वैसा ही कथन होगा, यानी कथन में कोई भेद नहीं, इन्हें कथन में ओघ से कोई भेद नहीं। ओघ जैसा ही कथन है। अब नरक गति में लोभ का जघन्य काल सबसे सुख है, उससे माया का जघन्य काल संख्यात गुना है। अभी पहला नंबर लोभ का, फिर माया का, उससे मान का जघन्य काल संख्यात गुना है। यह संख्यात गुना की बात है, वहां पर हमने विशेष अधिक लिया था, यानी लोभ का जघन्य काल, फिर माया का जघन्य काल फिर मान का जघन्य काल संख्यात गुना, उससे क्रोध का जघन्य काल संख्यात गुना। ये चार जो अल्पभूत जघन्य में लगे, उससे लोभ का उत्कृष्ट काल संख्यात संख्यात गुना है, दो बार संख्यात गुना किया। उससे माया का उत्कृष्ट काल संख्यात गुना, क्योंकि क्रोध के जघन्य काल से लोभ का उत्कृष्ट काल लेना था, इसलिए दो बार संख्यात गुना किया। अब लोभ के उत्कृष्ट से माया का उत्कृष्ट मात्र संख्यात गुना, उससे मान का उत्कृष्ट काल संख्यात गुना, और उससे क्रोध का उत्कृष्ट काल संख्यात गुना। इसी प्रकार देवगति में भी जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि लोभ का उत्कृष्ट काल संख्यात गुना है, इस स्थान के प्राप्त होने तक विलोम क्रम से जानना चाहिए। विलोम यानी उल्टा क्रम।
तो देवगति में जघन्य किसका लेना था?
देखो देखो यहाँ क्या किया, लोभ का उत्कृष्ट काल संख्यात गुना है, इस स्थान के प्राप्त होने तक, यानी उसमें क्या कहेंगे,
यहाँ पे क्रोध का पहले लेने का है, देवगति में विलोम से विलोम से जानना है।
हाँ,
क्रोध का जघन्य काल,
क्रोध का कम है, फिर मान का, फिर माया का, फिर लोभ का, यानी लोभ का ज्यादा में रखना। यहाँ क्रोध की उत्कृष्टता बताई नरक में, वहाँ लोभ की ले, उल्टे क्रम चले। शंका, चारों गतियों में पृथक पृथक अल्प बहुत्व का, बहुत्व का एक तो नहीं चाहिए बीच में, अल्प बहुत्व का निर्देश सूत्रकार ने क्यों नहीं किया, यानी हरेक का अलग अलग क्यों नहीं बताया। समाधान, नहीं, क्योंकि आगे कहे जाने वाले चारों गतियों के समुच्चय रूप अल्प बहुत्व के कथन से ही उसका ज्ञान हो जाता है, यानी अल्प बहुत्व की बात आती है तो उसमें गतियों में बता देंगे, इसलिए सूत्रकार ने चारों गतियों में पृथक पृथक अल्प बहुत्व का निर्देश नहीं किया। हाँ, उसमें कोई विशेषता नहीं है, जैसे विशेषता नहीं, जो हमने देखा ना पहले किसको लिया था, मान सबसे कम लिया था, फिर क्रोध, फिर माया, फिर लोभ। हाँ, यहाँ लोभ का जघन्य लिया था नरक में, फिर माया, फिर मान, फिर क्रोध। तेने वो उद्देशेन चौगई समासेन अप्पा बहुवम भणी ही दी, उसी उपदेश के अनुसार चारों गतियों में समुच्चय रूप से अल्प बहुत्व का कथन करेंगे, चारों गतियों को इकट्ठा लेके समुच्चय रूप से उसका अल्प बहुत्व कहेंगे। ये वही उपदेश चल रहा है प्रवाह्यमान वाला, उसी प्रवाह्यमान उपदेश के अनुसार चारों गतियों में एक साथ अल्प बहुत्व का कथन करते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। परंतु चारों गतियों में समुच्चय रूप वह अल्प बहुत्व तीन प्रकार का है, जघन्य पद, उत्कृष्ट पद और जघन्योत्कृष्ट पद। उनमें से जघन्योत्कृष्ट पद रूप अल्प बहुत्व से आदि के दो अल्प बहुत्वों का ज्ञान हो जाता है, इसलिए उसी का कथन करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं। चतुर्गति समासेन जहन्नुक्कस पदेन निरय गदीये जहन्निया लोबद्धात होवा, चारों गतियों में समुच्चय रूप से कथन करने पर जघन्योत्कृष्ट पद की अपेक्षा नरक गति में डबल का हुआ, लोभ का जघन्य काल सबसे स्तोक है, क्योंकि जाति विशेष के कारण ही नारकी दोष बहुल होते हैं, इसलिए उनमें पेंज स्वरूप यानी प्रेम स्वरूप लोभ परिणाम का चिरकाल तक रहना संभव नहीं है। थोड़ा थोड़ा रहता, ये प्रेम को भी लोभ में लिया है। हम लोभ यानी वो पैसे का लोभ को ही लेते हैं, वही तो राग। देव गति ये जहन्या कोदर्धा विशेष चाहिए। अब चारों गतियों के टोटल अल्प भूत को बता रहे। पहले सबसे थोड़ा काल नरक गति के लोभ का है, फिर देव गति में क्रोध का है, उससे देव गति में क्रोध का जघन्य काल विशेष अधिक है। पेंज बहुल देवों में यद्यपि क्रोध का यह काल बहुत थोड़ा होता है, तो भी नारकियों के लोभ के जघन्य काल से जाति विशेष वर्ष विशेष अधिक होता है, ऐसा जानना चाहिए। यानी नारकियों में वो लोभ का अत्यंत अल्प होता है काल, उससे यहाँ का क्रोध भी ज्यादा होता है। शंका, विशेष का प्रमाण कितना है? क्या लिखा है? आवली के असंख्यात भाग प्रमाण। अभी देवगति के जघन्य क्रोध का काल बताया। अभी देवगति है जहन्या मानद्धा संख्यात गुणा। देवगति में मान का जघन्य काल संख्यात गुणा है। उन्होंने क्या लिखा था? उल्टे प्रकार से लिया था, इसी प्रकार उल्टा विलोम लिखा था वहां पर। देखो ये कहां आई बात, विलोम की बात 19 पेज पर। इतनी विशेषता है कि विलोम क्रम से जानना चाहिए। इसी प्रकार लिख के विलोम क्रम बताया, तो वहां कैसा नरक गति में कैसा अल्पभूत होता है, लोभ माया मान क्रोध,
वहां पे क्रोध।
हाँ, अभी यहाँ का लोभ लिया, देव का क्रोध लिया, फिर देव का मान ले रहे
थे। माया लिया।
नंबर डालेंगे हम चारों गतियों में, डालना है ना। अभी पहले में, पहले नरक गति में लोभ का जघन्य काल, दूसरे में देव गति में क्रोध का जघन्य काल, तीसरे देव गति जघन्य मानद्धा संकेत गुना, देव गति में मान का जघन्य काल संख्यात गुना है, क्योंकि देवों में क्रोध के उपयोग काल से मान के उपयोग काल के सर्वदा उस प्रकार से रहने का नियम देखा जाता है। संख्यात गुणा कहा, वहां तो विशेष अधिक कहा था। गुणकार क्या है? समाधान, तत्प्रायोग्य संख्यात अंक गुणकार है। ये बात हम कल पढ़ेंगे। ये तीन तो हो गए, इसको लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे पूरा अल्पभूत। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तक न हो सदा देख हो। अश्विन
नमोरियंताणं नमोचित्ताणं नमायणं नमोवर्जनं नमोलोये सद्वत्सावनं। नमोरियंताणं नमोचित्ताणं नमायणं नमोवर्जनं नमोलोये सद्वत्सावनं। नमोरियंताणं नमोचित्ताणं नमायणं नमोवर्जनं नमोलोये सद्वत्सावनं।